नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दुनिया की प्रमुख उपभोक्ता प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल का देश की राजधानी दिल्ली में पहला स्टोर बृहस्पतिवार से खुल गया। इस मौके पर कंपनी के सीईओ टिम कुक ने ग्राहकों का स्वागत किया। दिल्ली में एप्पल का स्टोर साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में खुला है। एप्पल साकेत नाम के इस स्टोर का डिजाइन दिल्ली के पुराने दरवाजे से प्रेरित है। हालांकि आकार में यह मुंबई के स्टोर से छोटा है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कारोबारी जिले के एक मॉल में एप्पल का स्टोर मंगलवार को खुला था। सूत्रों ने बताया कि एप्पल साकेत स्टोर आकार में मुंबई के स्टोर का आधा है। साकेत स्टोर में कंपनी की रिटेल टीम में 70 से अधिक सदस्य हैं, जो देश के 18 राज्यों से हैं और अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं। हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी की अदायगी से बचने की कोशिश को कर अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर नाकाम किया और 1.01 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का पता लगाया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी आसूचना महानिदेशालय के अधिकारियों ने पिछले वित्त वर्ष में कर चोरी करने वालों से 21,000 करोड़ रुपए की वसूली भी की। अधिकारियों ने कहा कि सरकार कर अनुपालन बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए डेटा विश्लेषण एवं मानवीय खुफिया सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा, डीजीसीआई अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1,01,300 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता लगाया, जो पिछले साल की तुलना में करीब दोगुना है। वित्त वर्ष 2021-22 में डीजीसीआई ने 54,000 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता लगाया था। बीते वित्त वर्ष में कर चोरी के करीब 14,000 मामले दर्ज किए गए, जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा 12,574 था। घरेलू इस्तेमाल के सामान की त्वरित आपूर्ति करने वाली कंपनी ब्लिंकिट के ज्यादातर स्टोर पर परिचालन शुरू हो चुका है। इससे पहले ये स्टोर डिलीवरी साझेदारों की हड़ताल से प्रभावित हुए थे। जोमैटो ने शेयर बाजार को ये जानकारी दी। पिछले वर्ष जोमैटो ने ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया था। बीते दिनों मंच के डिलीवरी साझेदारों ने प्रत्येक ऑर्डर के बदले मिलने वाले भुगतान में कटौती के विरोध में हड़ताल की थी, जिससे आपूर्ति मंच का परिचालन प्रभावित हुआ था। जोमैटो ने शेयर बाजारों को सूचित किया, अपने कर्मचारियों डिलीवरी साझेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने कुछ स्टोर थोड़े दिन के लिए बंद कर दिए थे, हालांकि इनमें से ज्यादातर स्टोर का परिचालन शुरू हो गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी कंपनी फोर्टिस हेल्थ केयर ने मानेसर स्थित मेडोर अस्पताल के अधिग्रहण के लिए संयुक्त अरब अमीरात के वीपीएस समूह के साथ समझौता किया। सौदे का आकार 225 करोड़ रुपए होगा। कंपनी ने बृहस्पतिवार को ये घोषणा की। फोर्टिस ने 225 करोड़ रुपए के कुल खरीद मूल्य पर मेडोर अस्पताल को खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अस्पताल की क्षमता 350 बिस्तरों की है। इसे लगभग 9 महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। इसके तहत मेडोर की भूमि, भवन और चल संपत्ति की खरीद शामिल है। सौदा जुलाई 2023 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। फोर्टिस हेल्थ केयर ने एक बयान में कहा कि इस सौदे के लिए राशि कर्ज और आंतरिक स्रोतों से जुटाई जाएगी। भारत के 25 हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। वहीं अन्य 121 हवाई अड्डे शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त कर लेंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा। सिंधिया ने 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से वह इस सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सके। जलवायु परिवर्तन से निपटना भारत और यूरोपीय संघ के लिए एक साझा लक्ष्य है, इस पर जोर देते हुए सिंधिया ने कहा। उत्सर्जन में विमानन उद्योग की हिस्सेदारी पर कड़ी नजर है। विमानन उद्योग से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और इसके असर को दूर करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। भारत के साथ व्यापार समझौते को पूरा करने के प्रयासों के तहत यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन के व्यापार मंत्रियों की भारत यात्रा से पहले 4 देशों के सांसदों ने बृहस्पतिवार को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। EFTA के व्यापार मंत्रियों के भारत दौरे से पहले यहां आए सांसदों ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि काफी समय से लंबित इस व्यापार समझौते को दोनों पक्ष किसी तरह पूरा कर लेंगे। नॉर्वे की लेबर पार्टी की सांसद ट्राइन लिसे सन्नेस की अगुवाई में समूह के सदस्य देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लीकटेनस्टीन और आइसलैंड के संसद सदस्य यहां पहुंचे। सेंडेंस ने पीटीआई भाषा से कहा, दौरे का परिणाम संतोषजनक रहा। हमारा उद्देश्य समझौते को लेकर चल रही वार्ता को समर्थन देना, ताकि इसे पूरा करने के लिए राजनीतिक जोर लगाया जा सके। हमारा मानना है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। प्रौद्योगिकी कंपनी ओयो ने बृहस्पतिवार को कहा कि अयोध्या विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से वह 2023 में अयोध्या में 50 नई संपत्तियां जोड़ेगी। कंपनी ने एक बयान में बताया कि इन 50 नई संपत्तियों में से 25 होमस्टे होंगी जिनका संचालन आवास स्वामी करेंगे, जबकि 25 छोटे और मध्यम आकार वाले होटल होंगे जिनमें 10 से 20 कमरे होंगे। मौजूदा समय में अयोध्या में ओयो की 5 संपत्तियां हैं। कंपनी ने बताया कि अयोध्या में अपनी विस्तार योजना के लिए वह अयोध्या विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर काम कर रही है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।